कल हमने योगिक खेती के बारे में बहुत बार सुना, लेकिन मैं सोच रही थी कि सर्वांगीण विकास में केवल अपना कार्य नहीं होता है, कार्य के साथ साथ परिवार होता है, समाज होता है, धर्म होता है, स्वास्थ्य होता है, अपना खुद का विकास होता है। जब सारी बातों में हमें प्रगति महसूस हो, समस्याओं से हम घिरे नहीं, तब हम एक सुखमय शांतिमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। राजयोग के सत्र से मैं आशा रखती हूं कि आपको स्वयं के अंदर जाने का एक बहुत सुंदर मौका मिलेगा, क्योंकि अगर परिवार, समाज, धर्म, स्वास्थ्य, हमें सब में विकास चाहिए, तो जिसको हम बहुत बारी अनदेखा करते हैं, और वो है स्वयं को। जब समस्याएं आती है तो पूरा ध्यान समस्या के ऊपर चला जाता है। जब तक वो समस्या खत्म नहीं होती है, दिल को चैन नहीं मिलता है, और उसमें इतनी अपनी ऊर्जा व्यय चली जाती है कि समस्या के जाने के बाद भी समस्या की सोच नहीं जाती है, और वो लंबे समय तक हमारे अंदर घर कर लेती है, और उसके कारण फिर आगे चल करके संबंधों में दरार, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, सामाजिक रीति से भी जो विकास होना चाहिए उसमें हमें नहीं रियलाइज होता है, लेकिन हमारा भी उसमें ऐसे योगदान चला जाता है। इसलिए जब हम ब्रह्मा कुमारी में आए, हमें ये बात बहुत अंदर तक छू गई कि जिसके लिए हमें इतना ध्यान ही नहीं है, जिसके प्रति इतना मान ही नहीं है, जिसको हम स्वमान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, हम औरों के लिए या अपने क्षेत्रों के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि भारत का जो एक संस्कृति है, उसमें हम देखते हैं कि जो मंदिरों में जिनको हम रखते हैं, वो तो रॉयल रीति से रखते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए हम बस सब कुछ कर गुजरते हैं। जबकि वो हमारे सामने नहीं है। भारत की संस्कृति कहती है हमारे में एक रॉयल्टी है, हमारे में जो उनमें दिखता है, शांति, सुख, प्रेम, ये सब हमारे कल्चर में है, लेकिन जब हमारे जीवन से वो गायब हो जाता है, तब सोचो हम क्या करते हैं। हमारा देश जिसका आधार ही ये संस्कृति है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे कल भी कोई कह रहे थे कि पश्चिम के तौर तरीकों को अपनाने में हम देर नहीं लगाते हैं। ठीक बात है, कहीं से भी हम सीख जरूर सकते हैं, लेकिन अपने फाउंडेशन को हिलाकर नहीं। तो इसीलिए आप सभी जिस क्षेत्र से आए हो, सभी धरती मां से जुड़े हुए हो, धरती मां की लगन है आपके अंदर कि वो डेवलप हो, वो फलद्रूप हो, सबको सुख दे। नहीं तो आज की दुनिया केवल धन कमाने के पीछे रख रही है, केवल धन कमा लिया, अपना घर मकान महल बना लिया, वो रॉयल्टी आ गई ऐसा समझते हैं, जबकि रॉयल्टी हमारे अंदर है। किसी बाहरी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना, हमारा व्यवहार, हर एक में हमारी संस्कृति की झलक होनी चाहिए। शायद अभी क्योंकि बहुत समस्याओं का सामना कर चुके होंगे, आप अनुभवी हो, इसीलिए आपको पहले समस्या ही दिखाई देगी कि समस्या है, आप नहीं समझ सकती हो, कैसा लगता है हमको, क्या गुजर, कैसे हम किसमें से कैसे गुजरते हैं। लेकिन जब आप आज का सत्र सुनेंगे तो आपको महसूस होगा शायद हम करी दूसरी रीति से रहे हैं, तो हम इसमें से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का स्व अस्तित्व की वास्तविक पहचान। सीधा इसी पॉइंट पे आते हैं कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, हम कौन हैं। आपने कभी इसे देखा है, ये क्या है? ये बर्फ की शिला है, सॉरी, बर्फ की शिला है जो समुद्र में पाई जाती है। एक बार एक बहुत बड़ी बड़ा जहाज वो अपनी पहली यात्रा पर निकला, सबको बहुत ही खुशी थी, बहुत विश्वास था जिस रीति से वो जहाज बना हुआ था, सबको तनिक भी ख्याल नहीं था कि इसके साथ कुछ हो सकता है। और हुआ कुछ ऐसे कि जब वो समुद्र के बीच में था, उस समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जहाज डूबने लगता है। जब कारण का पता चला तो कहा एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा था। छोटे से बर्फ के टुकड़े से इतना बड़े जहाज को कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन जब देखा गया तो वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नहीं, एक पूरा पहाड़ था। ऐसे ही हम मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य आत्माएं, हमारा भी जो परिचय है ना, कुछ ऐसा है। जो पानी के ऊपर दिख रहा है वो सारे पहाड़ का केवल 10% है, दिखने वाला केवल 10% है। सोचिए हमारे परिचय में जो दिखता है वो क्या क्या चीजें हैं। हमारे परिचय में जो दिखता है वो क्या क्या चीजें हैं। फिर से एक बार बताएंगे प्लीज। नाम है, पद है, ये शरीर है, दिखता है, संबंध है ना, जो हम कार्य करते हैं, ये सारा जो है वो दिखता है ना। तो दिखने वाली चीज कितनी है? 10%। हम किसी को बहुत अच्छी तरह से बोल देते हैं, अरे मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अगर उसे पूछे कितना जानते हो, क्या जानते हो, व्यवहार के रूप से जो दिखता है, जैसे किसी में गुस्सा है, किसी में आलस है, वो भी जो दिखता है व्यवहार से, वो भी 10% में आता है। लेकिन वो जो गुस्सा है वो किस कारण से आ रहा है, जो आलस है वो किस कारण से है, वो जो गहरी बातें हैं वो उसका 90% है, जो उसके एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। और हम हरेक में है, हम हरेक में ये 90% है। कितना हम जानते हैं इसके बारे में, ये हम खुद ही समझ सकते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये काम कर रहा है। कोई स्वभाव है, कोई संस्कार है, कोई पर्सनालिटी के कोई हिस्सा है, ये मुझे महसूस हो रहा है अंदर से, वो 90% है। अब बताओ जब जीवन में एक्सीडेंट होता है, कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, कुछ हमारे साथ होता है, तो उसमें केवल 10% का काम होगा कि 90% का भी काम होगा? होगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आती है हम 10% तो ठीक है, लेकिन 90% में भी रिएक्शन देते हैं, उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। इस 90% में अपने अनुभव भी है, तो अनुभव के आधार से भी हम अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं। सही है। लेकिन उसके जो बीच में, बिल्कुल बीच में जो ढक गया है ये 90% से, बिल्कुल ढक गया है, जो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, वहां हमारी वास्तविकता है। इतना 90% के लेयर्स लग गए हैं, कवर लग गए हैं, कि जो हमारी वास्तविकता है वो बिल्कुल छिप गई है, बिल्कुल छिप गई है। आज हमें उस वास्तविकता का सही ज्ञान लेना है। आप सब तो धरती मां से जुड़े हो, इसीलिए कोई मनुष्य आपको कुछ सिखा नहीं सकता है, लेकिन भगवान आपका साथी है ना हमेशा, तो भगवान आपको जरूर सिखा सकते हैं ना, भगवान ये राज आपके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आज आप परमात्मा के महावाक्य, भगवान के महावाक्य के द्वारा जो ज्ञान मिला है, उस द्वारा आपको अपना सत्य परिचय प्राप्त होगा। जीवन में कभी भी आपने कुछ प्रश्न तो पूछे होंगे, जैसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझ में क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं आखिर कहां जाऊंगा, मैं यहां क्यों हूं, यहां मेरा कौन है। हाथ खड़ा करें जो समझते मैंने कभी ये प्रश्न नहीं पूछे, कोई भी नहीं है सभा में जिन्होंने कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछे। हो सकता है ये जन्म में ना पूछा हो, क्योंकि कभी भी उत्तर न मिलने के कारण थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब ऐसे प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं, और ये एक छोटा बच्चा भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है अपनी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जिस संसार में हम रहते हैं वहां हमें सब उपलब्ध होता है, सही है? इस संसार में हमें सब उपलब्ध होता है ना? किसे उपलब्ध होता है? मुझे उपलब्ध होता है ना? लेकिन मैं कौन हूं? अगर ये हम सही रीति से नहीं जानते हैं और केवल उपलब्धियों से खेलते रहते हैं, इसको क्या कहेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन तब होगा ना जब स्व की पहचान होगी कि भाई हम यहां क्यों आए हैं। जब व्यक्ति को अचानक ऐसा रियलाइज होता है मैं क्यों यहां आया हूं, तो उसकी आंखें चमक जाती है, उसका मस्तक चमक जाता है, और वो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना दूसरा कहीं भी अपना ध्यान व्यय करने की जगह वो बिल्कुल फोकस होकर अपना कार्य लाइफ में करता है, क्योंकि उसको लगता है मैं इसी के लिए आया हूं। करने के लिए तो बहुत कुछ है, करने के लिए इतनी वैरायटी है धरती पर, हमें जो चाहिए हम कर सकते हैं। अपने लिए इकट्ठा करो, दूसरों को मदद करो, घूमने जाओ, ये देखो, ये खरीदो, लोग यही करते हैं ना। अमीर लोगों की बातें करो, क्या आता है? इनके इतने घर है, इनके पास इतनी शौहरत है, इनके पास इतनी बोट है और एरोप्लेन विमान है, यही सब बताते हैं ना। और कुछ बताते हैं? लेकिन हम तो पहले से ही अमीर है। जब कुछ उपलब्धियां हुई नहीं थी इस धरती से, तभी भी हम अमीर थे। ऐसा तो नहीं हुआ है कि उपलब्धियां पाने के बाद अंदर से ऐसे गरीबी फील हो रही है। पूछो अपने आप से, ऐसा तो नहीं लग रहा है हम कुछ खो रहे हैं पाने की जगह? कुछ अशांति है, कुछ दुख है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, ये सब है खोना। संबंधों को खोया, किसी ने धोखा दिया तो पैसों को, धन को खोया। कई बार पार्टनरशिप में ऐसा होता है। तो हमें ये चेक करना है कि हम आए तो अमीर थे, अभी क्या हाल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इस संसार से क्या क्या मिला, लेकिन जिसे हम अपना समझते हैं, जिसके ऊपर हमने लेबल लगा लिया, ये मेरा है, मिला हमको संसार से है। किसी से भी मिली हुई चीज को गिफ्ट कहेंगे या अपनी चीज क्या कहेंगे? तोहफा कहेंगे ना। किसी और से जब कोई मिलती है चीजें तो उसको तोहफा कहा जाता है, आपकी खुद की संपत्ति नहीं होती है। समझो आपके मित्र ने आपको एक बहुत अच्छी घड़ी दी, सालों से आपके पास है, लेकिन आप जैसे घड़ी देखते हो तो क्या याद आता है? मेरे मित्र ने दी है, ऐसे याद आता है ना। पहनते हो आप अपनी कलाई पे, लेकिन देखकर आपको याद आता है मेरे फ्रेंड का तोहफा है ना। आपने अगर धन से खरीदा है तो आप कहेंगे ये मेरा है, मैंने खरीदा है। पूछा जाइए धन कहां से आया, फिर कहां से आया है ना। मना इन शॉर्ट संसार की हर एक चीज है ना, आती है जाती है, अब पूछो मेरा कौन, अब पूछो मेरी चीज कौन सी। जो चीज हमेशा के लिए आपके पास रहने वाली नहीं है उसको आप मेरी कैसे कह सकते हो, जो आई है और जाएगी। इसमें सबसे पहले है पूछूंगी शरीर किसने दिया आपको, याद नहीं है? माता पिता ने, ये शरीर माता पिता ने दिया है। कभी थैंक यू बोला है, धन्यवाद बोला है अपने मां बाप को, आपको इतना सुंदर शरीर दिया कार्य करने के लिए और जिसकी कीमत करोड़ों में है। ऐसी संपत्ति आपको मां बाप ने दी, वाह। इसीलिए तो कहते हैं मां बाप का हम कभी भूल नहीं सकते हैं उपकार, लेकिन हमें नहीं याद आता ये तो मेरा शरीर है, ये तो मैं हूं। ऐसे गलत इंप्रेशन हमें अपने परिचय के लिए होता है, खुद के परिचय के लिए। हाँ, समाज में रहते हैं, एक दो की पहचान फॉर्मेलिटी के लिए जरूरी होती है, इसलिए ये शरीर उसमें काम आता है। नाम किसने दिया आपको? बुआ ने दिया, मां ने दिया, पता नहीं किसने दिया, कोई एक्ट्रेस का, कोई एक्टर का नाम है? आजकल तो फैशन है ना, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं और सोचते ये मैं हूं, कहीं से मिला हुआ है। जब छोटे थे, जन्मे हुए थे, हमारा चॉइस ही नहीं था कि मुझे ये नाम अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। था चॉइस, अपने को चुनाव था कि मुझे हाँ ये नाम बहुत अच्छा है, भले भले रखो। ऐसी कई चीजें सिर्फ आपके पास आ गई है, बस पूछो अपने आप से, सचमुच ये मेरा परिचय है, ये मैं हूं? अगर सब कुछ मेरे पास आया है तो मैं कौन? रिश्ते, जन्मे तब आपको बोला गया देखो ये तुम्हारे पिताजी है, देखो ये मां है, धीरे धीरे पहचान होने लगी, मतलब पहले से नहीं था। ऐसे संपत्ति कितनी मेहनत करनी पड़ती है संपत्ति बनाने के लिए, बिना मेहनत के कुछ मुंह में मिलेगा भी नहीं, सच बात है ना? जितना करेंगे उतनी प्राप्ति होगी। आपकी भूमिका, आप जो रोल बजाते हो, कभी किसान का रोल, कभी डायरेक्टर का रोल, कभी मां का रोल, कभी फ्रेंड का रोल, कभी बेटे का रोल, कभी पति का रोल, कभी दोस्त का रोल, कभी मैनेजर का रोल, पता नहीं क्या क्या रोल बजाते हैं, कितनी भूमिकाएं बजाते हैं। सारी भूमिकाएं बजाने के बाद किसके पास आते हो आप? सारी भूमिकाएं बजाकर फिर आप किसके पास आते हो लास्ट में? अपने पास, भगवान के पास। मंदिर में जाना भी आपकी एक भूमिका है, पर एंड में आप किसके पास आते हो? अपने पास। कौशल, जितना भी कौशल आपके अंदर है, जितनी भी टैलेंट्स है, जितना भी आपके अंदर जो भी योग्यताएं आई है, वो बाहर से ही आई है। अगर आपने दो तीन जन्म वही कौशल प्रैक्टिस किया होगा तो हो सकता है बहुत स्वाभाविक रीति से इस जन्म में वो उत्पन्न हो गया होगा अंदर से, लेकिन आया तो बाहर से ही है। जैसे हम सुनते हैं कोई 5 साल का बच्चा गाड़ी चला के गया यहां से वहां, कोई 11 साल का बच्चा म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, वगैरह वगैरह। आप सोचते हैं इसमें तो वो कौशल था ही नहीं, कैसे बन गया, हमने तो सिखाया ही नहीं, हमने तो कहां भेजा नहीं, होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन जो भी कौशल है वो सब प्राप्त हुआ है। आपकी जो इमेज, आपकी जो छवि आपने अभी बनाई है इतने सालों के बाद, वो भी तो आपको प्राप्त कराई गई ना। अगर कोई पहचान नहीं पाते, कोई पहचान नहीं देते, तो वो छवि का क्या मतलब है? जब तक बाहर से वो नहीं आता है, अपनी बनाई हुई छवि का भी कोई मतलब नहीं। पद, उपलब्धियां, जितनी भी लाइफ में हुई है, सब बाहर से प्राप्त होता है। आपकी मान्यताएं, उस दिन ही किसी के साथ में कार में जा रही थी तो वो भाई कह रहे थे, मैं तो भोलानाथ में बहुत मानता हूं, और मैं ना गणेश में, इसमें, उसमें, सब में बहुत अच्छा, मैं सबके पास जाता हूं मंदिरों में। तो मैंने पूछा कि आपके किस अनुभव से आप जाते हो? तो चुप हो गए और कहा कि नहीं, हमारे परिवार वाले ना पहले से ही ये सब करते आए हैं और उन्होंने हमको सिखाया, तो हम भी यही करते हैं। माना उनको भी बाहर से सीखने को मिला कि ऐसे ऐसे भोलानाथ जी के पास जाना चाहिए, गणेश जी के पास जाना चाहिए, ये मंदिर में, वो मंदिर में जाना चाहिए। अंदर से नहीं है, बाहर से सीखने को मिला है। तो ऐसी कई मान्यताएं हमारे अंदर से नहीं, लेकिन कहीं से आती है। कोई कहते हैं साईं बाबा के द्वारा ये हुआ, ऐसे ऐसे अनुभव हुए, तो वो सोचता है अच्छा मैं भी जाऊं। इस प्रकार से मान्यताओं को भी हम बनाते जाते हैं, और लास्ट में ये सारा जो हमें मिला है ना, इसका हमें अहंकार हो जाता है, ये सब मेरा है, जो हमेशा के लिए कभी रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इसलिए कहते हैं मिथ्या अहंकार, अहंकार को बोला जाता है मिथ्या अहंकार। जितना आप मेरा 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 समझते जाओगे ना, उतना अहंकार जो है वो बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये सब बाहर की चीजें हैं तो मेरे अंदर क्या है, जो मेरा ओरिजिनल हो, मेरा अपना हो, जो किसी ने भी नहीं बनाया मेरे लिए, मैं खुद ही हूं, ये हमारी वास्तविक पहचान होंगे। और इसमें भी सब अलग अलग हो सकते हैं, अपने अनुभवों में, लेकिन देखा जाए तो अंदर में जो अपना सत्य परिचय है वो काफी एक जैसा है। जैसे हमारे जीवन के मूल्य, जिनके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं, जीने को भी तैयार हूं, जीने को भी तैयार हूं, ऐसा कोई मूल्य आपके अंदर है जिसके लिए आप कहते हो कि मैं इससे जीना भी चाहता हूं और मैं इसके लिए मर भी सकता हूं? ऐसा अगर कोई मूल्य है तो वो आप हो, आपकी चमक है, आपकी ओरिजिनलिटी है। वैसे तो बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं हर एक में, लेकिन उस वो भी कहीं कहीं से, कोई किताब पढ़ने से, कोई के अनुभव से, कोई के साथ से भी आ सकता है। लेकिन ऐसा है कोई मूल्य जिसके लिए आप कहो कि नहीं, मैं इसमें जी भी सकता हूं इसके लिए, और इसके लिए मैं मर भी सकता हूं, ऐसा अगर कोई मूल्य आपके अंदर है तो वो आपका परिचय है। इट स्टैंड्स फॉर यू। आपका सारा कारोबार करने का जो सार है, आपका जीने का जो सार है, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, अगर उसमें भी सब और ही है तो वो आपकी सत्यता नहीं है। जैसे भाई परिवार बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही जाती है ना, कि जो परिवार वाले हैं उनके लिए हमको करना है। जैसे माँ होती है उसको थोड़ी बोलना पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिकली परिवार के लिए करने ही लगती है। ऐसे जो पुरुष है वो कमाने लगते हैं, पूछते हैं क्यों कमा रहे हो भाई, अपने परिवार के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। जब तक ऐसे ऐसे लक्ष्य है कमाने के, तब तक आपको अपने सत्य परिचय का पता नहीं है। जिस दिन आपका लक्ष्य कुछ ऐसा गहरा हो जाएगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तब आपको अपनी पहचान मिलेगी, जब आपको वो सार मिलेगा अपने जीवन में। उसमें अगर आप अकेले हो, परिवार के साथ हो, झुंड में हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जीना, आपका सारा कारोबार करने का सार उसमें समाया हुआ है। जब तक वो अनुभव नहीं होता है ना, आप कितना भी कर लो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, हम सब चीजों से, ये जो शरीर जैसे हैं, ऐसे हर चीजों से, जैसे मैं अभी लैपटॉप से काम ले रही हूं, मैं माइक से काम ले रही हूं, ऐसे आप भी कई चीजों से काम लेते होंगे, और वो सब हमारे जो पांच तत्व है उसके आधार से बनते जाते हैं। या धरती में जो चीजें मिलती है उससे बनते हैं, सही है सारी चीजें। लेकिन अगर एक फैक्ट्री है, उसमें सारे मशीन है, सब लोग हैं, सब तैयार है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या होगा? कुछ चलेगा ही नहीं। ऐसी ही ये जितनी भी चीजें हैं, ये सबको चलाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। जब तक हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड नहीं है, तब तक हमें अपना सत्य परिचय कभी नहीं मिलेगा। आईने में जब अपने आप को देखते हो ना, ये दिखाई देगा लेकिन वो ऊर्जा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऊर्जा अपने आप में, पता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने वालों ने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी देखा है? कभी भी देखा है अपनी आंखों से? कभी नहीं। एक अदृश्य ऊर्जा होती है। ऐसे ही हम सबका भी कॉम्बिनेशन जो है, शरीर है तत्व, पांचों तत्वों से बना है। आपको पता है ना, जो पैर का भाग है वो धरती तत्व है, इसीलिए धरती से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। इससे पहले के जमाने में चप्पल नहीं पहनते थे, डायरेक्ट धरती से कनेक्टेड रहते थे। हमारी संस्कृति में ऐसा था, कोई चप्पल नहीं पहनता था, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड होते थे धरती के साथ। उसके ऊपरी जो हिस्सा है वो पानी है, उससे ऊपर जो है वो अग्नि है, पेट का भाग, उससे ऊपर जो है वो वायु है, और उससे ऊपर जो है आकाश है। तो ये जो शरीर है ये पांच तत्व से बना हुआ है, चलेगा कैसे? आप कहेंगे वो श्वास है ना, श्वास से चलेगा। श्वास को चलाने के लिए अभी ऑक्सीजन सब बन गया है, सिलेंडर बन गया है, वेंटिलेटर बन गया है, सब बन गया है साधन। कोई ऐसी चीज हो जिस पे कोई मनुष्य का हक ना हो, कोई मनुष्य उसको नहीं रोक सकता, कोई मनुष्य उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अविनाशी अनादि अपना परिचय है। जब मौत होती है किसी की, कितना भी डॉक्टर्स ने काम किया होगा, मौत होती है, फिर डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं, गॉन, ओवर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सॉरी। अरे इतना कुछ करने के बावजूद क्या हुआ? ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो तत्व कैसे काम करेगा? और उस ऊर्जा का परिचय हम कितनों को है? किस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं? शायद शब्द तो सुना होगा, कई शास्त्रों में खास करके गीता में ये शब्द है जिसको कहते हैं आत्मा, सुना है? जिन्होंने शब्द आत्मा सुना है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, रोज की जिंदगी में इसका क्या महत्व है आपको? रोज की जिंदगी में इसका क्या महत्व है? रोज की जिंदगी में शरीर का कितना महत्व है? 100%। और आत्मा का 0। इसका मतलब कोई बैलेंस ही नहीं। ऊर्जा और तत्व जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं, समझो सूरज आए ही नहीं, खिले ही नहीं, ऊपर आए ही नहीं, उगे ही नहीं, क्या होगा खेती का? पानी बरसे ही नहीं, क्या होगा? क्योंकि वो तत्व है, वो तत्व है लेकिन वो ऊर्जा दे रहे हैं। कोई भी चीज ऊर्जा के बिना हो ही नहीं सकती। हम भी जिंदा ऊर्जा के कारण है। हाँ, तत्वों में भी जो अंग मिले हैं अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो ऊर्जा को भी चलने में दिक्कत होगी। लेकिन हमने देखा है ऐसे ऐसे लोग फिर भी जिंदा रहते हैं, देखा होगा ना आपने भी, अंग नहीं ठीक तरह से काम कर रहे लेकिन फिर भी जिंदा है। फिर हम कहते हैं अब जब उनका वो तिथि आएगी, जब मरना लिखा होगा तभी जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब कि तत्वों के साथ जो ऊर्जा काम कर रही है, जब तक वो है, भले शरीर के अंग न भी काम करते हो, जब तक वो है अंग रहेगा, हम कहेंगे ये जिंदा है। कई बार कहते ब्रेन डेड हो गया है लेकिन फिर भी वेंटिलेटर पर रखा जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा जब तक नहीं जाती है तब तक मृत्यु नहीं कहलाती है। और उसी ऊर्जा को आत्मा नाम दिया गया। कुछ तो नाम देंगे ना, संसार में हर चीज को नाम है, इसको भी नाम दिया है आत्मा। और गीता में एक ही ऐसा शास्त्र है जिसमें लिखा है भगवान उवाच, गॉड स्पीक्स, और उन्होंने भी आत्मा शब्द बोला है। सेकेंड चैप्टर पूरा आत्मा पर है जिसमें कहा है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कोई तलवार उसको काट नहीं सकती, कोई पानी डुबो नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई उड़ा नहीं सकता हवा, उसका अस्तित्व ही अलग है। और वो किसका अस्तित्व है? हमारा। हम ये शरीर इसीलिए नहीं है क्योंकि शरीर हमको कहीं से मिला है। तो जो लिस्ट होता है ना, एक होता है मैं का लिस्ट, एक होता है मेरे का लिस्ट। मेरा क्या है उसमें आप शरीर भी डाल सकते हो, नाम भी डाल सकते हो, संबंध भी डाल सकते हो, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। मैं कौन? तो आप कहेंगे मैं डायरेक्टर हूं, मैं मां हूं। आप अपनी भूमिका को अपना परिचय दे देते हो जबकि भूमिका भी अर्जित है। तो मैं कौन? मैं ओरिजिनली वो ऊर्जा, वो आत्मा हूं जो अपने आप काम करती है। कोई उसे जन्म नहीं दे सकता क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं है, सिंपल। जब कहा गया है कि वो अजर अमर अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं है, तो इसका जन्म भी कौन दे सकता है? कोई नहीं। माना हम जैसे यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है, ऐसे हम आत्मा भी नेचुरल ओरिजिनल है। क्या हमने कभी अपना ऐसा एहसास किया? कितनों को मरने का डर है ना? क्यों? क्योंकि शरीर समझते अपने आप को, आत्मा तो मरती नहीं है। और अगर मैं कहूं मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और रोज अभ्यास करूं कि मैं आत्मा हूं, तो क्या मृत्यु का भय रहेगा? क्योंकि मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं। कितने प्रकार के भय हमारी लाइफ में जमा हो गए हैं, बस एक ही बात पे हम अपने को नहीं जानते थे, स्वयं को नहीं पहचानते थे। एक भय से अनेक भय हो गए, और भय के कारण ही बाकी सब विकार आते हैं। लड़ाई झगड़ा भी का आधार भय है, क्रोध का आधार भी भय है। अगर भय से मुक्त होना है तो आपको रोज अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। हां, शरीर मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। हो सकेगा ये अभ्यास? हो सकेगा। दिखाई कुछ नहीं देगा, कंडीशन, लेकिन आप महसूस तो करते हो ना कई चीजें। गर्मी महसूस करते हो कि नहीं? ठंडी महसूस करते हो कि नहीं? अपने बच्चे का दुख सुख महसूस करते हो कि नहीं? वो बोले कि ना बोले? मां को कैसे महसूस होता है बच्चे को भूख लगी है, बच्चे का पेट दर्द हो रहा है? डॉक्टर थोड़ी ना है वो, लेकिन हमारे अंदर महसूसता की शक्ति है, हम महसूस कर सकते हैं। भले कोई चीज ना दिखाई दे, महसूस कर सकते हैं। अपनी महसूसता की शक्ति यूज करो और प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं। और कैसी है आत्मा? ऊर्जा है। ऊर्जा माना प्रकाश। और क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, क्या अणु दिखाई देता है? नहीं ना। फिर भी कितनी चीजें बनती हैं अणु से? सारे दुनिया का विध्वंस करने की चीज भी अणु से बनती है, पर अणु दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आत्मा अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसीलिए ज्योमेट्री में हम जो ड्राइंग करते हैं अलग अलग चीजों को बताने के लिए, उसमें सबसे छोटा जो मात्रा है ना, वो है बिंदु, सबसे छोटी। उससे फिर छोटी और कुछ नहीं है। तो अगर हमको आत्मा को डिस्क्राइब करना है, बताना है, सोचना है आत्मा कैसी है, तो मैं आत्मा प्रकाश का एक बिंदु हूं, ऐसा कह सकते हैं। वो बिंदु दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आत्मा प्रकाश का एक बिंदु हूं। इसीलिए जो अपना चित्र होता है पीछे, आपने सब जगह देखा होगा, वो बिंदु से किरणें निकल रही है। वैसे तो हम दिखते हैं, हम सब ऐसे प्रकाश के बिंदु हैं। और ये किरणें क्या है? ये हमारे वाइब्रेशन है, हमारे प्रकंपन है, जो हमारे हर सोच से, हर बोल से, हर कर्म से निकलते रहते हैं, सतत निकलते रहते हैं प्रकंपन। अभी जो हम सब बैठे ना, हम एक दूसरे के प्रकंपनों को ले रहे हैं। अब जिस जगह सब लोग बैठ के रोते ही होंगे, समझो रोते ही रहते हैं उधर जाके, तो आप उधर जाएंगे तो क्या फील होगा? आपको भी रोने जैसा लगेगा। अगर आप सर्कस में जाएंगे और जोकर बाहर आता है, तो आपको कैसे महसूस होता है? क्योंकि वो प्रकंपन ही फेंक रहा है, खुशी का, हंसी का। ऐसे हम आप सभी अपने अपने प्रकंपन फेंक रहे हैं सबको। सोचो, क्योंकि हम सब चैतन्य, जिसकी मृत्यु होती है ना उसको चैतन्य नहीं कहा जाता है, वो जड़ के इसमें आ जाता है, लेकिन हम चैतन्य है, लिविंग, सदा जीते आत्माएं, प्रकाश के बिंदु, जिसको कोई मार नहीं सकता, मां बाप भी उसको जन्म नहीं दे सकते, वो शाश्वत है। मां बाप केवल हम आत्मा को ये शरीर देते हैं, एक घर देते हैं, एक पालना देते हैं, बाकी मालिक कौन है? हम खुद, अपने जीवन के मालिक हम खुद है, आत्मा के रूप से। ये आत्मा है क्या? आत्मा तीन बातों से बनी हुई है, माना ये ऊर्जा तीन रीति से काम करती है। सबसे पहला काम है सोचना, और इस सोचने के हिस्से को कहा जाता है, हम लोग ने ही नाम दिया है, मन। मन क्या करता है? सोचने का काम करता है, आइडियाज, नए नए विचार क्रिएट करने का काम करता है। स्वप्न भी आते हैं ना, वो मन की सोच के आधार से आते हैं। ये सब मन का काम है, इच्छाएं उत्पन्न करना, ये सब मन काम करता है। मन दिखाई देता है? नहीं। फिर वो किसका भाग है? शरीर का भाग है या आत्मा का भाग है? आत्मा का भाग है। हार्ट कहां का भाग है, शरीर का या आत्मा का? शरीर का। किडनी जो है वो शरीर का या आत्मा का? शरीर का। मन, क्योंकि महसूस कर सकते हैं और सारा दिन रात काम करता है, मरने के बाद भी मन का काम चालू रहता है, सोने के बाद भी चालू रहता है, इसलिए मन शरीर का भाग नहीं है। हाँ, मन का कनेक्शन, माना सोचने का कनेक्शन हृदय के साथ, दूसरे अंगों के साथ हो सकता है। अगर मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका असर हार्ट पे, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं भाई ज्यादा स्ट्रेस मत लो, नहीं तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी आपको। कनेक्शन है लेकिन वो अलग है, अस्तित्व उसका अलग है। दूसरा अंग है आत्मा का, बुद्धि। बुद्धि, मस्तिष्क किसका भाग है? ब्रेन, शरीर का, क्योंकि दिखता है, डॉक्टर आपको दिखा सकता है कि इसको मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन बुद्धि जो है ना वो डॉक्टर कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि बुद्धि आत्मा का भाग है। बुद्धि क्या काम करती है? जितने भी विचार चले, समझो दिन में आपके 60,000 विचार चले, ये रिसर्च की हुई है, सारे 60,000 विचार थोड़ी हम काम में लाएंगे, तो कौन सा विचार मुझे लेना है, उसको कैसे यूज करना है, इसका कितना वैल्यू है, ये कौन डिसाइड करता है? बुद्धि। बुद्धि सोच के ऊपर सारा काम करती है, और अंत में बुद्धि क्या देती है? निर्णय। बुद्धि क्या देती है? निर्णय। निर्णय क्या आया, उस आधार से आप काम करने लगेंगे। तो ये निर्णय देने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी क्या है बुद्धि की? क्योंकि कोई तो किसी को मारने का भी निर्णय ले सकता है, और कोई किसी को तोहफा देने का भी निर्णय ले सकता है, कोई किसी को बचाने का भी निर्णय ले सकता है। हर एक की बुद्धि की आज अलग अलग क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पर सब निर्णय लेते हैं, इसीलिए आज निर्णयों में फर्क है। हम सोचते पूरा परिवार हमारी तरह सोचे, हमारी तरह निर्णय ले, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है, क्योंकि भले आपका बेटा है, भले आपकी पत्नी है, भले आपका पोता है, लेकिन हर एक अपने में इंडिविजुअल आत्मा है, उनकी अपनी बुद्धि है, उनका अपना मन है। ये पेरेंट्स कभी नहीं सोचते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, बस ये मेरा है, फिर मेरे के लिस्ट में आ गया। लेकिन ये आत्मा है, ये भी चैतन्य है, ये भी मन और बुद्धि है, ये कभी नहीं सोच चलती है। मां बाप का काम ही है उसे हर रीति से समझ के, इसका मन कैसे चल रहा है, इसकी बुद्धि कैसे चल रही है, समझ के उसको पालना देना। बाकी अपनी प्रॉपर्टी समझ के काम नहीं करना है उसके साथ, क्योंकि कोई भी आत्मा आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, कोई भी आत्मा, और आप भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, आप भी तो आत्मा हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र आत्मा। या पहला अपना शरीर पर ही परतंत्र हो गए हैं, है ना, कंटिन्यूस काम करते 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 आत्मा शरीर पर डिपेंडेंट हो गई है, शरीर को आत्मा पर डिपेंडेंट होना है, उल्टा हो गया। इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार। जब ये उत्पन्न हो जाता है आत्मा जीरो हो जाती है, खत्म, आत्मा का अस्तित्व ही स्मृति में नहीं रहता है। मैं देह भान में आती हूं, देह के अभिमान में आती हूं, देह के अहंकार में आती हूं, फिनिश, अपने आप से मैं गुम। बहुत फर्क पड़ जाता है, और फिर फर्क पड़ता है सोचने पर, निर्णय लेने पर, और जब जो निर्णय आप लेते हो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जो भी निर्णय लेते हो फिर आप कर्म में आते हो, और आप जब कर्म में आते हो, आपको पता है आत्मा के अंदर एक पावरफुल परफेक्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, एक एक कर्म की रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए कर्म थियरी में बताते हैं कि कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? अंदर ही रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, कैसे बचेगा? एक झूठ भी बोला ना, उसे भी नहीं बच सकते, रिकॉर्डिंग है। और इसीलिए जो जो कर्म हम समझो एक ही प्रकार का कर्म रोज करते हैं, जैसे दांत साफ करना, कितनी बार रिकॉर्डिंग हो गई। इसीलिए जो दातून से साफ करते उसको अगर एक दिन आप ब्रश दे दो तो वो करेगा नहीं करेगा, बोले कि ये क्या है, क्योंकि अंदर की रिकॉर्डिंग किस चीज की है? दातून की है। अब जब तक वो रोज ब्रश यूज नहीं करेगा वो दातून की रिकॉर्डिंग तो रहेगी रहेगी, फिर ब्रश की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इसलिए नेचुरली एक अमेरिकन और अफ्रीकन जब चलते हैं रास्ते पर और उनको प्यास लगती है तो अमेरिकन क्या मांगता है? बियर, नेचुरल, रिकॉर्डिंग इतनी सारी है अंदर। और जो अफ्रीकन है वो क्या मांगेगा? पानी, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतनी सारी है कि जब भी प्यास लगती है वो पानी पीता है। समझ गए ना रिकॉर्डिंग की बात? आपके अंदर कितनी रिकॉर्डिंग है, कौन कौन सी बातों की रिकॉर्डिंग है, और वो सब वो 90% है, वो जो 90% देखा ना वो सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। और इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है हम नया सोचने की जरूरत नहीं महसूस करते, हमारे पास है ना वो 90%, उसी में से निकाल निकाल के परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करते हैं। अरे नया भी तो सोच सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, अरे ये तो बहुत बार हुआ है करके उसी से हम करने की कोशिश करते, पता चला एक दिन वो कुछ भी काम में नहीं आया। हो सकता है पिछला कुछ भी काम में नहीं आएगा, और अगर आपको नया सोचने की आदत ही नहीं है तो क्या हाल होगा। इवन देश के विकास का वही तो प्रश्न है ना, अगर आप नया नहीं सोच सकते हो, आप जो करते आए हो वही आप धीरे धीरे वही 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 करते रहेंगे, तो आप जहां थे वही रहेंगे, नया थोड़ी मिलेगा। इसीलिए अगर आपको नया चाहिए, नया क्या चाहिए वो भी प्रश्न है, ऐसा कुछ कि जिसमें आपको शांति भी बनी रहे, सुख भी मिले, एक बैलेंस रहे लाइफ का, तो फिर आपको ये प्रैक्टिस आरंभ करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो रिकॉर्डिंग जो बहुत बार बन जाती है उसको कहा जाता है आदत। हमारी जो आदतों के पैटर्न है वो इसी के आधार से बने हैं, और जब आदत बहुत कड़ी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपको लगता है नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, अब आप कितना भी बोलो मेरे से नहीं छूटेगा, उसको कहा जाता है संस्कार। हमने संस्कार बना लिए हैं, और वो भी 90% में है, ऊपर से जो भी आता है उसी में से। कोई शराबी है उसको बस एक शराब की दुकान दिखनी चाहिए, किसी के हाथ में शराब की बॉटल दिखनी चाहिए, बस नहीं भी हो तो भी उसको उसकी प्यास लगेगी, इतनी रिकॉर्डिंग है अंदर। लेकिन भगवान कहता है संसार में ऐसा कोई संस्कार नहीं जो आप बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप शाश्वत आत्मा है। अब ये नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए बड़े बड़े रिसर्चर्स भी कहते थे कि नहीं, बहुत कड़ा संस्कार नहीं बदल सकता। हमको वो कहानी देते थे ना कि वो छोटी छोटी रस्सियां तोड़ सकते हो, लेकिन जब बड़ा ये हो जाता है तो एक साथ हम तोड़ नहीं पाते हैं। फिर ये कहानियां हम बच्चों को देते हैं बचपन में। मॉरल ये था कि जो आदत आपकी है जल्दी से जल्दी बदलो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आत्मा के लिए ऐसी कोई संस्कार नहीं है जो वो बदली ना कर सके। आत्मा ऊर्जा है ना, ऊर्जा, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कई बार आपने बोला होगा, अरे मैंने बहुत सहन किया, अभी नहीं कर सकता। अगर आप आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आपको सहन शक्ति जो है, एक शक्ति महसूस होगी, पावर महसूस होगा, और आपको यूज करना आएगा, उसका तरीका आएगा। तरीका गलत हो सकता है ना सहन करने का, लेकिन जब आप अपने को आत्मा समझेंगे तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार धीरे धीरे एक साथ काम करने लगेंगे अच्छी रीति से, शक्ति आएगी उनमें, और उसकी विधि है राजयोग। राजयोग का ज्ञान आपको होगा तो आप डेफिनेटली आत्मा में पॉजिटिविटी, आत्मा में अच्छे संस्कार, जो ओरिजिनल बताया ना उधर, वो बर्फ की शिला का जो मध्य भाग था, वो ओरिजिनल आपको महसूस होने लगेगा कि मैं ओरिजिनली कैसी हूं, एक परमानेंट बेस पे मैं कौन हूं, सदा के लिए शाश्वत रूप में मैं कौन हूं, ये आपको पहचानने में आएगा। हम इस प्रकार से देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, तिलक करते हैं ना, कहां करते हैं? कभी पूछा पुजारी जी से, पूछा अपने गुरु से, पूछा हम तिलक यहां क्यों करते, क्यों वही भाग तिलक के लिए बताया जाता है? क्योंकि वो आत्मा की स्मृति है। जैसे विवेकानंद जी ने भी कहा, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक आप परमात्मा को भी नहीं पा सकते हो। ऐसे ही जब मंदिर में जाते हो भगवान से मिलने और आपने अपने को आत्मा नहीं समझा तो वो मिलन कैसे हो सकता है? भगवान का संबंध तत्व के साथ नहीं है, ऊर्जा के साथ है। आप जो ऊर्जा हो आपको भगवान से मिलना है। शरीर तो यहां ही है ना, यहां का ही है तत्व का। इसीलिए मंदिर में जाते सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, वो भी इस स्थान में जिसको कहा जाता है ब्रुकुटी। अगर आप सामने से देखो तो ये भाग आता है, लेकिन वास्तव में दो आंखों के पीछे जहां पर मस्तिष्क शुरू होता है, ब्रेन, बस उसके पहले जो भाग है वो है आत्मा का भाग, आत्मा की जगह। उसे कोई चीज नहीं चाहिए रुकने के लिए, वहां वो अपने आप में ऊर्जा है। और फिर वो ऊर्जा सारे शरीर में स्वतः जाती रहती है, कंटिन्यूअस। लेकिन उसका जो स्रोत है वो है दो आंखों के पीछे, मस्तिष्क के आगे। वहां पर हम सब एक सितारे की तरह चमकते हैं। कईयों को दिखाई भी देता है लेकिन वो दिव्य दृष्टि होती है, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन नॉर्मल वे में ये आत्मा बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी महसूसता बढ़ेगी, मैं आत्मा हूं, मैं एक सितारा, चमकने वाला सितारा हूं, मैं दो आंखों के बीच उपस्थित हूं, मैं प्रकाश का बिंदु हूं, चैतन्य हूं। ऐसे अभ्यास करते रहना है रोज। यहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके कर्म, आपके संस्कार। और किस ओर जाएंगे संस्कार, किस ओर जाएंगे? जो हमारे मूल है उस ओर जाएंगे, जो हम लेके आए थे अपने साथ इस धरती पर उस ओर अपने संस्कार जाएंगे। आप देखिए ये जो बातें लिखी है, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्र, आनंद, सबको चाहिए? सबको चाहिए? कोई भी एक बैठा है जिसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हाँ आप कहेंगे, लेकिन दीदी ऐसा थोड़ी है कि धन नहीं कमाना चाहिए, घर नहीं बनाना चाहिए, अगर यही सब है तो हम नहीं। वो सब भी आप इन संस्कारों से बनाओ, कहने का भावार्थ ये है। आप धन भी कमाओ तो इन संस्कारों से कमाओ। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ये काम आएगा। जब आप कोई बात के लिए कहेंगे नहीं मैं कुछ नहीं जानती, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती, मैं नहीं कर सकती हूं, तब आप बोलेंगे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, तो ये नेगेटिव थॉट निकल जाएगा। पर ऐसे नहीं होता है, रोज प्रैक्टिस करने से फिर नेचुरली काम आता है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। हर एक्टिविटी में आप एक एक गुण को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल पैकेज आत्मा के रूप से ये सात गुण है। हम ये संपत्ति लेकर आए थे इस धरा पर, बाकी सब कुछ यहां से मिला है, पर हम ये संपत्ति, हर एक आत्मा शक्तियां भी लाए, लेकिन आज हम गुणों की बात कर रहे हैं। शक्तियां भी लाए, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं गुणों का कि ये सारे जो गुण है ये मैं हूं। शांति क्या है? मैं हूं। प्रेम क्या है? मैं हूं। क्या आप ऐसे ठोक के कह सकते हो? इसीलिए कहा जाता है यहां देह अभिमानी नहीं आत्मा अभिमानी बनो, क्योंकि आत्मा का जो अभिमान है ना वो शुद्ध है, जिसमें शांति प्रेम सुख ज्ञान शक्ति पवित्रता आनंद है, ये है आत्मा का अभिमान। और देह का अभिमान तो आपको पता ही है। यहां पर बताया जाता है आत्मा अभिमानी बनो, बैलेंस आ जाएगा आत्मा और शरीर का। बैलेंस आ गया ना फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, देह भान एकदम ही भारी है और आत्मा भान बिल्कुल एकदम जीरो है, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। इसी को कहा जाता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता केवल भगवान का नाम लेना नहीं है, अपने जीवन को भी बैलेंस करना आध्यात्मिकता है। आत्मा और शरीर का वेरी ब्यूटिफुल बैलेंस होना चाहिए। तो आज से आप ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं कौन, पहला प्रश्न था ना, मैं कौन, मैं क्या हूं, मुझ में क्या है, ये तीन प्रश्न का जवाब मिला। मैं कौन, मैं चैतन्य, पहले चैतन्य शाश्वत आत्मा, ताकि जड़ और जो टेम्पररी है उससे आप अपने को अलग समझ सको। मैं चैतन्य शाश्वत आत्मा हूं, ये मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ऊर्जा का बिंदु हूं। मुझ में क्या है? मन, मन और बताओ बुद्धि संस्कार। मुझ में क्या है? मन बुद्धि और संस्कार। मूलभूत संस्कार कौन से हैं मुझ में? शांति प्रेम सुख ज्ञान शक्ति पवित्र आनंद। कैसे याद रखोगे ये सात गुणों को? आपके है, खुद हो आप खुद हो, आपका ये परिचय है। ऐसा मत भूलना बाहर जाके मैं भूल गया वो सात क्या था, मन आप अपने आप को ही भूल गए हो। लिख लो, याद कर लो कि मैं कौन हूं, मैं शांति हूं, प्रेम हूं, सुख हूं, ज्ञान हूं, शक्ति हूं, पवित्रता हूं, आनंद हूं, मैं ये हूं। और ये सब मिल करके आत्मा, मैं मन बुद्धि और संस्कार हूं, सब मिल करके मैं आत्मा हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न है मैं कहां से आया हूं, आखिर में मुझे कहां जाना है? ये तो मुसाफिर खाना है, आना है और जाना है, ऐसे बोलते थे ना। दो दिन का मेला है, चार दिन की चांदनी है, ऐसे ऐसे बोलते हम, समझते कुछ भी नहीं। आखिर में कहां जाना है? सिंपल आंसर है, जहां से आए थे वहीं जाएंगे। तो इसलिए यहां पर परमात्मा ने यह भी हमें बताया, बच्चे आप कहां से आए हो और आपको वापस कहां जाना है। सॉरी, मैं इसे कैसे याद करती हूं? ऐसे हाथ करिए और यहां मैं आत्मा, ठीक है, फादर नॉलेज, मदर पवित्रता, फादर जो है पिताजी जो है वो ज्ञान, मां जो है वो पवित्रता, तीन भाई बहन है प्रेम सुख आनंद, और इसे घर में क्या बन जाता है? शांति और शक्ति। ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। मैं कौन? मैं आत्मा। पिताजी कौन? ज्ञान। मां कौन? पवित्रता। तीन भाई बहन कौन?
प्रेम, सुख, आनंद, और इससे घर में क्या रहता है? शांति और शक्ति।
देखना, भूल नहीं जाना, नहीं तो आप अपने आप को ही भूल जाएंगे। अभी अपने आप को सबसे पहले याद करो, रात को सोने से पहले याद आना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पास ही लौटते हो, तो तभी याद करना वापस मैं कौन। फिर धीरे धीरे सारा दिन याद रहेगा, आप बिल्कुल अपने चैतन्य स्वरूप से हर कार्य करेंगे, शरीर की मदद से करेंगे, लेकिन करने वाली होगी आत्मा। अभी भी करने वाली आत्मा थी, लेकिन वो स्मृति नहीं थी। वो स्मृति कहां चली गई? शरीर में। अब स्मृति को वापस शरीर से निकाल के आत्मा में बिठानी है, तो हम क्या बन जाएंगे? आत्मा अभिमानी। या देह अभिमान में आना है, रहना है आपको? देह अभिमान तो एक जाल है, एक जेल है, उसमें आप फंसे हुए हो। आत्मा अभिमानी बनने से जेल खुल जाएगी। जैसे कृष्ण को जब निकालना था, तब क्या हो गया था? सारे जेल के द्वार खुल गए थे, सारे जो गार्ड थे वो सब सो गए थे। ऐसे जब हम आत्माभिमानी बनते हैं, तो जितने भी देह अभिमान के गार्ड है ना, वो सब सो जाएंगे, ये जेल खुल जाएगी, हम अपने आप को आजाद महसूस करेंगे। अपने ही संस्कारों की जेल से निकलना है, फिर दुनिया में जेल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हमको यही करना है, खेती के साथ सदा जुड़े रहेंगे, सही बात के नहीं? खेती के साथ सदा जुड़े रहना है, लेकिन जेल से मुक्त जरूर होना है। हमें जेल नहीं चाहिए, है ना? इसलिए ये सुधरने का तरीका है, अपनी जेल से मुक्त होने का। अच्छा, अब कहां से आए? लास्ट, जो नीचे का एरिया दिख रहा है, जो नीले रंग का है, वहां पर अपनी पृथ्वी भी है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सारे ग्रह है, ये जहां पर हम अभी है, धरती, उसका चित्र है। और यहां पर हम सब देह अभिमान में है, देह और देह के साथ मिली हुई सारी विस्तार की बातों की स्मृति में है, उपलब्धियों की स्मृति में है। अब हमें आत्माभिमानी बनना है, तो क्या करना है? इस देह की दुनिया से, विज्ञान कहां तक जाता है? जहां सूर्य, चांद, तारे दिखाए हैं ना, ग्रह, विज्ञान वहां तक जाता है। आज तक कोई भी, हां कई योगी, कई महान आत्माएं जिन्होंने विशेष अभ्यास किया, वो उससे भी थोड़ा ऊपर जा पाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल देह अभिमान में है, वो सृष्टि के ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। मेडिटेशन माना, अपनी स्मृति को जागृत कर अपने ही भान को परे ले जाना, ऊंचा उठाना। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, उसमें आपको महसूस होगा, पूरा तरीका बताया जाएगा कैसे आप यहां से ऊंचा उठो अपने विचारों में। इससे परे जो दिखाया है, जो नीला रंग है, उससे जो परे दिखाया है, उसको कहा गया है सूक्ष्म वतन। ये भी परमात्मा ने ज्ञान दिया कि सूक्ष्म वतन है सूक्ष्म देवताओं का स्थान, सूक्ष्म फरिश्तों का स्थान, जो कई यहां की आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं, राह बताते हैं आगे बढ़ाने के लिए।
सबको इसका अनुभव हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक प्रकार का अनुभव करते हैं और वो है जब हम स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं ना, ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जो कभी नहीं देखे, ऐसे लोग जो कभी नहीं देखे, तो वो नींद है, वो अलग चीज है। जागते जगत आप जब अपनी स्मृति से ऊपर चले जाते हो तो आपको भी कई चीजें महसूस होती है, लेकिन वो सूक्ष्म होती है। दूसरी बात, इस शरीर के अंदर, ये जो पांच तत्व का शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जो हमारे संस्कार अनुभवों से, वो रिकॉर्डिंग से बनता जाता है, लेकिन वो शरीर केवल प्रकाश का शरीर होता है। सेम शेप, सेम हाइट, पता चलेगा कि ये व्यक्ति का शरीर है, लेकिन केवल प्रकाश का शरीर होता है। जैसे ये पांच तत्व का शरीर है ना, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर है जो प्रकाश का बना है और वो दिखता नहीं है। जब वो मेडिटेशन से यहां से ऊपर उठते हैं तो आत्मा का वाहन वो प्रकाश का शरीर बनता है, सूक्ष्म काया जिसको कहा जाता है, और वो हमें दुनिया की स्मृतियों से परे ले जाता है और हमें अनुभव कराता है कि हम बहुत विशेष है, साधारण नहीं है। हमारे अंदर ये सारे गुण जो है वो महसूस होने लगते हैं। जब हम इस जेल में यहां पर अपने कैद में हैं तो हम गुणों को महसूस नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हैं दूसरे कोई हमको दे, खुद महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म वतन में होते हैं हम खुद में वो गुण महसूस कर सकते हैं और चाहे तो दूसरों को मदद भी कर सकते हैं इन गुणों से। तो सूक्ष्म वतन बहुत ही पावरफुल स्थान है, फरिश्तों का स्थान है, और हम सब भी वास्तव में फरिश्ते हैं, लेकिन अभी वो महसूसता नहीं है क्योंकि गुणों की महसूसता नहीं है। सतत फरिश्ता किसको कहा जाता है, जिसको अपने गुणों की महसूसता सतत होती है, एवरी सेकेंड, वो फरिश्ता होता है। हम साधारण मनुष्य बन गए क्योंकि देह अभिमान ने हमें बना दिया, ओरिजिनली हम साधारण नहीं है। उससे भी परे हिंदुइज्म में बताते हैं, हिंदू धर्म में, कि वहां ना ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। ब्रह्मा को कमल पे दिखाते हैं, विष्णु को ऐसे कभी खड़े चार भुजा वाले बताते हैं, कभी वो सर्प पे लेटे हुए है बताते हैं, और महेश जो है उनको एक चोटी पर बताते हैं, ऐसे बताते कहानियों में, कथाओं में। लेकिन उसका भी वास्तविक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो आपको बाद में कोर्स में पता चलेगा कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, ये त्रिमूर्ति का गायन क्यों है, वो क्या करते हैं, वो आपको बाद में डिटेल मालूम पड़ेगा। पर उसे सूक्ष्म वतन कहते हैं, और उससे परे आप जाओ जो अनहद है, जो बेहद है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, ऐसे बेहद भरपूर शांति और बेहद शक्ति का स्थान, उसे कहा जाता है परमधाम, सुनहरे लाल प्रकाश का तत्व, शांति धाम। परमधाम माना जो सबसे ऊंचा धाम है, उससे ऊंचा और कोई धाम नहीं है, शांति धाम, जहां अखुट और अनंत शांति है। ऐसी शांति आपको दुनिया में भी महसूस नहीं हो सकती, इतनी शांति है। इसे परलोक कहते हैं, माना जो लोग इस दुनिया के प्रभावों से परे हैं, माना आवास से परे हैं, कर्म से परे हैं, शरीरों से परे हैं, कोई बंधनों से परे हैं, इसलिए परलोक। इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं क्योंकि ये जो तत्व है जिससे बना है, एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को नाम दिया है ब्रह्म महातत्व। इसीलिए उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। इसे निर्वाण धाम भी कहते हैं कहीं, माना कहते ना पार निर्वाण गया, माना वाणी से परे चला गया, जो स्थान वाणी से परे है उसे निर्वाण धाम कहते हैं। इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं कि जहां आत्मा दुनिया की हर चीज से मुक्त हो जाती है उसे मुक्ति धाम कहा जाता है। तो आपने नाम सुने होंगे ना इसमें से कोई कोई। आपको इजी वे में बताऊं क्या है, यह हम आत्माओं का निजी धाम है, घर है, जहां से हम ओरिजिनली आए इस धरा पर। क्या लेके आए अपने साथ, क्या लेके आए बताया ना, हमारी आंतरिक संपत्ति, गुणों की, शक्तियों की, वो लेकर के आए, हमारा ओरिजिनल पैकेज। फिर हमने वो शक्ति गुणों को कहां इस्तेमाल करना शुरू किया, यहां पर। और आज ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी लंबी यात्रा करके हम यहां बैठे हैं सब, क्योंकि इतने सारे गुण भी चले गए, खो गए, और या तो थोड़े थोड़े मात्रा में है, या तो उसको मिसयूज बहुत कर रहे हैं, क्या क्या पता नहीं। इसका मतलब बहुत लंबी यात्रा हो गई है परम धाम से, और आखिर में हमको वापस इसी धाम, अपने घर, अपने निज धाम में लौटना है, क्योंकि हर एक को अपने घर लौटने का तो पूरा हक है। यहां से आप सब कहां जाएंगे, अपने घर ना, हर एक का हक है अपने घर वापस जाना। आप भले इसको भी अपना घर बना दो, अरे यहां तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पे हैं, लेकिन टेम्पररी है, वापस आपको अपने ही घर जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये दुनिया भी टेम्पररी है, भले कितने भी 5-स्टार होटल में रह लो, संन्यास ले लो, ये कर लो, वो कर लो, महल बना दो, आखिर में एंड में कहां जाना है, परम धाम। और कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, जो पैकेज हम उधर से लाए थे वही पैकेज वापस जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, कोई कर्म भी नहीं जाएगा। तो अब ऐसे कर्म करने हैं जिससे हम अपने गुणों को, शक्तियों को फिर से अंदर जमा करें, क्योंकि वही पैकेज हमको वापस लेके जाना है। कर्म तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको ऐसा लक्ष्य दे सकते हैं कि हमें फिर से अपना पैकेज जमा करना है भाई, क्योंकि वही मुझे लेके जाना है। इसलिए उस लक्ष्य से जब आप कर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है आपका घर नहीं होगा, आपके संबंधी नहीं होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब में ये गुणों की अनुभूति होगी, ये डिफरेंस होगा। कोई आपके घर आएगा ना तो भी उसको इतना आनंद, इतना प्यार महसूस होगा, क्योंकि आपने उस प्रकंपणों से अपने घर को भर दिया, ठीक है ना। तो आध्यात्मिकता कभी दुनियावी बातें, दुनियावी कार्य को रोकता नहीं है, बनाई हमारे लिए है, लेकिन जब हम दिशा खो बैठते हैं, जब हम दिशाहीन हो जाते हैं, तब फिर से परमात्मा को हमें गाइड करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम ये ना भूले कि हम आए परमधाम से थे, आखिर में हमें परमधाम जाना है, ये मेरा घर है, आत्माओं का धाम। आपने देखा ना उधर आत्मा स्वरूप में सभी टिके हुए हैं, जैसे सितारे टिकते हैं ना आकाश में, ऐसे हम आत्माएं टिकती है परम धाम में, और फिर नीचे आते हैं, मुसाफरी करते हैं अपने कर्म के लिए। ऑफिस है ना अपना, ये पृथ्वी क्या है, ऑफिस है, खेल का मैदान है, ठीक है। पवेलियन क्या है, परम धाम, ठीक है ना। कोई भी खेल वाला होता है उसको लास्ट में कहां जाना पड़ता है, पवेलियन में जाना पड़ता है ना, कितना भी खेले। ऐसे परम धाम हमारा धाम है, और यहां जो मनुष्य सृष्टि है वो हमारी ऑफिस है, खेल का मैदान है, कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, और अभी थोड़ा थोड़ा कुरुक्षेत्र भी बन गई है। थोड़ा थोड़ा बनी है, कितना बनी है, बहुत ज्यादा बन गई है ना, इसीलिए भी टाइम आया है कि इस कुरुक्षेत्र का अंत हो उसके पहले। हम अपना कर्म क्षेत्र तो बनावे, किसी और का नहीं बना सकते तो ठीक है, हम अपना तो बनावे, बाद में तो ये टाइम भी नहीं रहेगा, हम अपना भी कर्म क्षेत्र नहीं बना पाएंगे, इतना हम उलझ जाएंगे कुरुक्षेत्र में। तो आप सब बहुत लकी हो जो आप इस स्थान पर आए हो, भगवान आपको दिशा दे रहे हैं, हम तो केवल इसके अनुभवी है और हमको कोई हक नहीं आपको ये सब बताने का, परमात्मा ने जो बताया है हम केवल इंस्ट्रूमेंट बन करके आपको ये मैसेज दे रहे हैं। बस इतना प्यार से जो आपने ये मैसेज लिया आज फर्स्ट लेसन, मैं कौन, मैं क्या हूं, मुझ में क्या है, कहां से आई हूं, कहां जाना है ना, अब मैं क्यों यहां हूं, और आगे के जो भी प्रश्न है मेरा कौन, वो आगे के लेसन्स में कवर होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। दो मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और एक पहली बार आत्मा का अभ्यास करेंगे, पहली बार, ओके, दो मिनट। आप सामने के चित्र को देख सकते हैं, कईयों को आंखें बंद करने की आदत होगी ध्यान सुन करके, लेकिन यहां आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, देखते हुए सुनते हुए हमें अनुभव करना है। आज की तारीख अपने पास नोट करके रखना। अगर आपको महसूस हुआ हो कि मैंने अपने आप को पाया, मैं कौन, ये शरीर सहित सब कुछ मुझे यहां से मिला है, कार्य करने के लिए, शांति, सुख, प्रेम, आनंद बांटने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, मुझ आत्मा को इस शरीर के भीतर दो आंखों के पीछे, मस्तिष्क के आगे रहना है। मैं एक अदृश्य शक्ति हूं, चैतन्य, शाश्वत, मेरा वास्तविक परिचय है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ऐसे दो आंखों के पीछे मैं आत्मा एक सितारे की तरह, एक डायमंड की तरह चमकती हूं। इन आंखों से देखने का कार्य करती हूं, कानों से सुनने का कार्य करती हूं, मुख से बोलने का कार्य करती हूं, मन से सोचने का कार्य करती हूं, बुद्धि से निर्णय लेने का कार्य करती हूं, मेरे एक एक कर्म की रिकॉर्डिंग मुझ आत्मा में होती है। मेरे मूलभूत संस्कार आज मैंने जाने कि मैं कैसा हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। मैं इस शरीर का मालिक हूं, गुलाम नहीं। मुझे आत्मा को इस शरीर को चलाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने हैं, पर मुझे अपनी मूल संपत्ति को गंवाना नहीं है। आखिर मुझे उसी संपत्ति से वापस अपने धाम, परम धाम, शांति धाम में लौटना है। मेरी यहां बहुत लंबी मुसाफरी हो चुकी है। मुझे अभी जल्दी वापस लौटने की भी तैयारी करनी है। मेरे मूल संस्कारों को मुझे जमा करने हैं। मैं कभी ना भूलूं मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। महसूस करें अपनी ऊर्जा को। फिर से इस ऑडिटोरियम के भान में आ जाएं। ओम शांति।